ओम शांति। गहन योग की अनुभूति करने की विधि, आज आप सभी का संध्या को बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया गया है। अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त मिलन, उसमें ऐसा अनुभव होता है कि डायरेक्ट हम बाबा से मिल रहे हैं, बाबा परम धाम से आए हैं, हमारे सामने हैं और बाबा से हम बहुत सुंदर अव्यक्त मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव होता है। ताली तो बजाओ भाई। तो उस अव्यक्त मिलन का आनंद लेने के लिए अव्यक्त स्थिति का अनुभव, योग की स्थिति का सुंदर अनुभव हमारे पास होना जरूरी है। जितना आप योग युक्त होकर बाबा से मिलन मनाएंगे, आपको बाबा भरपूर करेंगे, वरदानों से खजानों से बाबा आपको माला माल कर देंगे। उसी संदर्भ में ये आज का विषय क्लास का रखा है, गहन योग की अनुभूति कैसे करें, उसमें कैसे स्थित हो जाएं, उसका आनंद कैसे लें ताकि हम बाबा से सुंदर मुलाकात कर सकें। तो इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं योगी आत्माएं। जो भाग्य योगी आत्माओं को प्राप्त होता है, उससे बढ़कर उससे ऊंचा भाग्य इस संसार में है ही नहीं। वो कौन सा भाग्य है? योगी आत्माएं न केवल भगवान के नैनों के सामने रहते हैं, लेकिन भगवान के नैनों का नूर बनकर रहते हैं, भगवान के नैनों के पलकों में सदा पलते रहते हैं। इससे ऊंचा भाग्य इस संसार में कोई भी नहीं है। वरदानों के सागर बाबा हमें अनेक वरदान देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वरदान है योगी भाव का वरदान। कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं, तो योगी भाव का वरदान जिनों को मिलता है उन्हों को अन्य सभी वरदान स्वतः ही मिलते हैं। इसलिए संगम युग में मुझे योगी भाव का वरदान प्राप्त करना ही है, ऐसा हमारा लक्ष्य हो। तीसरी बात, जितनी महिमा शास्त्रों में भगवान की गई है, योगियों के महिमाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं, क्योंकि परमात्मा की महिमा है वो सारे जगत के पालनहार कहलाते हैं। तो योगी आत्माएं भी इस संसार के मास्टर पालनहार कहलाते हैं, वो परमात्मा से खजाने लेते रहते हैं और सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहते हैं, इसलिए मास्टर पालनहार का टाइटल उनको मिलता है। तो कहने का भाव है, मुझे योगी भाव का वरदान बाबा से लेना ही है। उसके लिए योगाभ्यास में मेरे पास बहुत सुंदर गहन अनुभव होना जरूरी है। जिन आत्माओं का योग का सब्जेक्ट फेवरेट होगा, जिन आत्माओं की योग के सब्जेक्ट में मास्टरी होगी, वही आत्माएं इस यूनिवर्सिटी में चमकेंगे, इस यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स होंगे। तो इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। इसमें तीन बातें हैं। तीन बातों को अगर हम अच्छी तरह से समझते हैं तो योगाभ्यास में आगे ही आगे सदा बढ़ते रहते हैं। तो इन तीनों बातों के बारे में हम स्पष्टीकरण देना चाहेंगे। सबसे पहले स्वयं को आत्मा कैसे समझें, उसकी यथार्थ विधि क्या है। योगाभ्यास में अच्छी तरह से आगे बढ़ना है तो उसके लिए आत्मा का सुंदर अनुभव हमारे पास होना चाहिए। जितना आत्मा का अनुभव सहज होता है, निरंतर होता है, नेचुरल होता है, उतनी बाबा की याद भी सहज, निरंतर और नेचुरल रहती है। इसलिए हमें आत्मा के अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से पक्का करना है। इसलिए कहते हैं, जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा समझते ही हमारी बुद्धि बाबा के तरफ जाती है और बाबा की याद से हमारे विकर्म भस्म होने लगते हैं। इसलिए एकांत में बैठकर विधि पूर्वक हमें आत्मा का अभ्यास करना है। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। भाई बहन के रूप में मेरा असली स्वरूप नहीं है। मैं निराकारी स्वरूप में इस धरती पर आई थी और निराकारी स्वरूप में ही घर वापस जाऊंगी। इसलिए आत्मा की विधि पूर्वक हमें प्रैक्टिस करनी है। विधि बड़ी सरल है। हमें पहले दिव्य नेत्र से आत्मा को देखना होगा। दिव्य नेत्र अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र से, ज्ञान चक्षु से, दिव्य नेत्र से हमें स्वयं के स्वरूप को देखना है। बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है कि मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। यहां देखना है और उसके बाद उसमें हमें स्थित होना है और बहुत सुंदर उसका अनुभव करना है। मैं बिंदु हूं, ज्योति बिंदु सितारा हूं, लेकिन किस प्रकार का हूं? शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, जो भी आत्मा के सात गुण हैं, निजी गुण हैं, उन सातों गुणों का हमें बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करते जाना है। तो देखने के परसेंटेज को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है और उस स्वरूप में स्थित होने के समय को बढ़ाते जाना है। एक घंटा दो घंटा चार घंटा ऐसे बढ़ाते जाना है और अपने असली स्वरूप में जो हमारा दिव्य स्वरूप है उस स्वरूप में हम जब चाहें एक सेकंड में स्थित हो जाएं। ऐसी प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छी तरह से करना है। तो जितनी प्रैक्टिस ये बढ़ती जाती है तो आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो आभा मंडल है, वो दिव्य और भव्य बनता जाता है। इसलिए कहते हैं जैसी स्थिति वैसी स्थिति वैसी हमारी उपस्थिति होती है। जहां हम जाते हैं हमारा ऑरा काम करने लगता है। इसलिए हमें बहुत अच्छी आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। लेकिन हम देखते हैं ये आत्मा का अभ्यास तो हम करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद ये अभ्यास हमें कभी कभी बोर भी होने लगता है। क्यों भाई, होता है कभी कभी बोर? हाँ जी, क्यों बोर होता है? क्योंकि हम छोटी सी गलती करते हैं। कौन सी गलती? मैं आत्मा हूं ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं किस प्रकार की आत्मा हूं, भगवान की नजरों में आई हुई आत्मा हूं, महान भाग्यशाली आत्मा हूं, इसको हम भूल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे स्व माना मैं आत्मा, मान अर्थात महान आत्मा, ये दोनों बातें साथ अनुभव करेंगे तो ये अभ्यास हमें कभी भी बोर नहीं होता है। इसलिए स्वमान के साथ इसका हमें अभ्यास करते जाना है। हम बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं, इस सभा में जो भी बैठे हैं महान भाग्यशाली आत्माएं हैं। भगवान हमारे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते रहते हैं। क्या गजब की बात है, भगवान सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता, हम बच्चों के भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते रहते हैं। कितने हम महान भाग्यशाली आत्माएं हैं। इसलिए हमें स्वमान के साथ आत्मा का अनुभव करते जाना है। तो आत्मा की ज्योत कभी भी बुझी ना हो। जिसके घर में सदा रोशनी रहती है वही बच्चे बाबा का नाम रोशन करते हैं। तो ये मेरा शरीर रूपी घर है, इसमें आत्मा की लाइट सदा जलती रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो अंतिम पेपर भी हमारा यही है। यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, भगवान हमारा टीचर है, अंतिम पेपर भी लेंगे और उस अंतिम पेपर में हमने अच्छे मार्क्स से पास होना है। उसके लिए हमारा पेपर क्या होगा? एक सेकंड में देह से न्यारा और उसी सेकंड बाबा का प्यारा अनुभव करना, उनकी याद में टिकना, ये हमारा अंतिम पेपर है। उसके लिए आत्मा का अभ्यास बहुत नेचुरल और सहज होता रहे, ऐसी प्रैक्टिस हमें करना है। 24 घंटे देह का भान नेचुरल रहता है कि मैं बहन हूं या मैं भाई हूं, मैं फलानी हूं। ऐसे 24 घंटे हमें आत्मा का भान नेचुरल रहे, उतनी प्रैक्टिस हमने घर जाने के पहले करनी है। आप सोचो कितनी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। दूसरी बात, आत्मा के साथ साथ हमें परमात्मा को भी अच्छी तरह से समझना होगा। क्योंकि बाबा मुरली में कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत थोड़े बच्चे मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं। ऐसा क्यों कहते भाई? हम नहीं जानते बाबा को, जानते इसलिए तो यहां बैठे हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहते इतने सारे ढेर बच्चे मेरे हैं, उनों में से थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं। इसका मतलब इसके पीछे जरूर कुछ राज, गुह्य राज छिपा हुआ है, उसको हमने समझना जरूरी है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बाबा का स्वरूप कैसा है, बाबा कैसे दिखाई देते हैं। तो बाबा का स्वरूप जैसे आत्मा बिंदु स्वरूप है, वैसे परमात्मा भी बिंदु स्वरूप ही है, स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जैसे बाप का स्वरूप वैसे बेटे का स्वरूप होता है। तो बिंदु आत्मा का स्वरूप है, बिंदु बाबा का भी स्वरूप है, लेकिन अंतर क्या है? जो सात गुण आत्मा में है, उन सात गुणों के बाबा सागर है, सिंधु है। आप सोचो, बिंदु है लेकिन उस बिंदु में सात सिंधु अर्थात सागर समाये हुए हैं। कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी आप सोचो, सात सागर उसमें समाये हुए हैं। इसलिए अर्जुन को जब साक्षात्कार भगवान का हो रहा था, अर्जुन वर्णन कर रहे थे परमात्मा का स्वरूप, ये जो साकार ईश्वरी हैं, इस साकार ईश्वर से हजारों गुणा शक्तिशाली हैं, ऐसा वो वर्णन कर रहे थे। कहने का मतलब बाबा बिंदु ही हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक शक्तियों के सागर हैं। इस सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है, तेजो में नहीं है लेकिन शक्तिशाली जरूर है। ये जो साकारी दुनिया का सूर्य है, ऐसे कई सूर्य वो पैदा कर सकता है, उतनी पावर उनके पास है। कितनी पावरफुल वो होगी बिंदु आप सोच सकते हैं। सारा संसार की आत्मा रूपी बैटरियों को चार्ज करने की क्षमता उनके पास है, आप सोच सकते हैं कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी। दूसरी बात, परमात्मा का जो नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, इस नाम से उनको पुकारा जाता है। दुनिया में किसी का भी ऐसा नाम नहीं है, किसी का सत्यम होगा, किसी का शिवम होगा, किसी का सुंदरम होगा, लेकिन एक ही साथ सत्यम शिवम सुंदरम किसी का नाम इस दुनिया में नहीं है। सत्यम अर्थात वो सत्यता के सागर हैं। सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए भावना में आकर लोगों ने क्रिश्चियनिटी में कहा है, गॉड इज ट्रुथ, ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। तो इसलिए वो सत्यता के सागर हैं, सारे संसार को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं और इस धरती पर सतयुग लाने वाले हैं। तो सत्यता के वो सागर हैं। शिवम अर्थात कल्याणकारी, सदा के कल्याणकारी, सबके कल्याणकारी और कल्याण के वो सागर है। सागर उनके जैसा मेरा कल्याण चाहने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं। ताली तो बजाओ जरा। हम द्वापर युग से बाबा को केवल गालियां दी, तुम कुत्ते में हो, तुम गधे में हो, तुम सुअर में हो। आपको अगर कोई कहे तुम कुत्ते में हो, फट से गुस्सा करेंगे, आंखें दिखाएंगे मैं कुत्ते में हूं। तो भगवान को हमने द्वापर युग से केवल गालियां दी, फिर भी वो रहम का सागर बाबा धरती पर आया और हम विकारों के गंदगी में लतपत होते हुए थे, फिर भी बाबा ने हमें उससे निकाला। ऐसा रहम करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मनुष्यात्माएं तो हद के कल्याणकारी हैं। कोई मेहमान घर में आता है तो 3 दिन के बाद घुमा फिरा के पूछते हैं, भाई तुम्हारा टिकट कब का है जाने का बताओ भाई, हद के कल्याणकारी है। तो वो कल्याण का सागर है, बेहद का कल्याणकारी है और सबका कल्याणकारी है। सुंदरम अर्थात वो सुंदरता का सागर है, उसके जैसा सुंदर तीनों जहां में कोई भी नहीं है। सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेकेदार है। सोचो तो सही कितना सुंदर होगा, सोचो तो सही। दुनिया में कोई सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, आशुक और माशुक एक दो को देखते हैं तो बड़ा अच्छा उन्होंने गीत बनाया है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे मैं क्या देखूं। आप इतनी सुंदर हो, आप इतनी सुंदर हो, तेरे चेहरे से नजर ही नहीं हटती है। तो हमारे दिल से ऐसा गीत निकले, बाबा आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, तुम्हारे चेहरे से मेरी नजर ही नहीं हटती है, ये दुनिया के नजारे मैं क्या देखूं बाबा, इस दुनिया में कोई रस नहीं है, इस दुनिया में कोई रस नहीं है, नीरस दुनिया है, आप तो सर्व रसों के भंडार हैं, इस दुनिया में कोई सार नहीं है, आप तो सबके सब संबंधों के सक्रीन हैं। तो बस बाबा जो सुंदरता के सागर हैं उसको ही हम देखते रहे। योगी माना परमात्मा के पागल प्रेमी, परमात्मा के दीवाने, परमात्मा के परवाने। योगियों को भगवान के बिना कुछ दिखाई नहीं देता है और भगवान को भी योगियों के बिना कुछ भी नजर नहीं आते हैं, एक दो के पीछे दीवाने होते हैं। इसलिए योग लगाना अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखना, बाबा को यथार्थ रीति से समझना अर्थात बाबा के स्वरूप को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, उनकी विशेषताओं को जानना, क्षमताओं को जानना, ऑल राउंड पर्सनैलिटी को जानने को कहेंगे भगवान को जानना। इस संसार में एक ही ब्रह्मा बाबा की आत्मा है जिन्होंने पूर्णतया भगवान को पहचाना है, बाकी दूसरों ने पहचाना है लेकिन नंबरवार पहचाना है। भाई मैंने भगवान को पहचाना है, मैं ऐसा अगर कहता हूं तो उसका क्या प्रमाण होगा? केवल कहने से तो नाम काम तो नहीं चलेगा ना। भगवान को पहचानना अर्थात हमारे पास जो अमूल्य प्यार की पूंजी है, उस प्यार की पूंजी को भगवान की तरफ ट्रांसफर कर देना, प्यार का सौदा उसके साथ करना, उसको कहते हैं सच्चा योगी, पक्का योगी। बाबा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे से है क्या तुम्हारे पास? बेघर माना बेघर, ये मकान भी किराए का लेकर बैठे हो, क्या है तुम्हारे पास? केवल और केवल दिल के सच्चे प्यार की पूंजी है, उस प्यार की पूंजी का सौदा मैं करने के लिए आया हूं। करोगे? 5,000 साल के बाद आकर बाबा कहते हैं मैं प्यार का सौदागर हूं, मेरे साथ प्यार का सौदा करोगे? बोलो भाई हाँ या ना, बोलो ना। 5000 वर्षों के बाद आया है और कहते हैं मैं केवल प्यार का सौदागर हूं। जिस प्यार का सौदा आपने आत्माओं के साथ द्वापर युग से किया और माया ने ऐसा लताड़ा, पांचों खिलाड़ियों ने ऐसे पीटा, कहीं का नहीं रखा। कितने कड़वे धोखे खाए, कितने हमने परेशान होते आए, तो अभी संगम युग में हमें प्यार का सौदा केवल भगवान के साथ करना है, किसी आत्मा के साथ प्यार को शेयर नहीं करना है। संगम माना भगवान के संग में रहना। सारा कलब हम आत्माओं के साथ रहे थे और सतयुग से वही काम करना है, सारा कलब आत्माओं के साथ ही रहना है। केवल ये संगम युग में भगवान के साथ में हमें रहना है। उसके लिए हमें ये रियलाइज करना है, प्यार मैंने दिल का बाबा के साथ ही शेयर करना है। करना चाहते हैं भाई, लेकिन कभी अभी कभी कभी क्या होता है, हमारा कई आत्माओं के साथ 5000 वर्षों का 84 जन्मों का कोई ना कोई हिसाब पॉजिटिव निगेटिव होता है, क्योंकि 84 जन्म का पार बजाकर हम यहां बैठे हैं, तो ना चाहते हुए किसी आत्मा के तरफ थोड़ा लगाव झुकाव आकर्षित आकर्षण होता है। उसको हमने चेक करना है और बाबा के तरफ प्यार को ट्रांसफर करना है। केवल बाबा ही बाबा मेरा संसार हो, और ऐसा अनुभव अगर आपको करना है तो 5 बातें प्यार के बारे में आप जानेंगे तो भूल से भी किसी आत्मा के साथ प्यार शेयर नहीं करोगे। जानना चाहते हैं भाई, बोलो कौन जानना चाहता है? बहुत सभी चाहते हैं, लिखो। मैं गारंटी देता हूं अगर वो 5 बातें आप महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे, भूल से भी किसी व्यक्ति वैभव के साथ प्यार नहीं शेयर करोगे। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं। द्वापर युग से हमने बहुत कड़वे अनुभव किए और बहुत धोखे खाए हैं, इसलिए लोगों ने कहा है परमात्मा का तो अंत पा सकते हैं, लेकिन मनुष्य आत्माओं का अंत पाना बहुत मुश्किल है, ऐसा अनुभव के आधार पर वो कहते हैं। केवल परमात्म प्यार ही रिलायबल लव है, ट्रस्टवर्दी प्यार है, विश्वास पात्र प्यार है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आत्माओं के प्यार में तो कभी किसी से प्यार होता है, सारा चिट्ठा लिख के देते हैं, मेरी इतनी सारी कंडीशन है, आपको कबूल है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कोई मुझे मतलब नहीं है। अब भगवान के प्यार में तो कोई कंडीशन है नहीं। बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। मैं पक्का सौदागर हूं, थोड़ा भी हेरा फेरी करोगे तो मेरे से और बुरा कोई नहीं होगा, मैं धर्मराज बन के फिर आपको सजा भी दूंगा, ये बाबा कह रहे हैं। बस सच्चाई चाहिए मुझे और कोई नहीं चाहिए, कोई कंडीशन नहीं। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही बेहद का प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, अविनाशी प्यार है। आत्माओं का प्यार तो हद का है, गागर है, वो भी खाली है, उछलती है, वो तो प्यार का सागर है। तो परमात्मा प्यार के सागर हैं और निस्वार्थ प्यार करते हैं। इस संसार में कोई भी नहीं है जो निस्वार्थ प्यार किसी से करता है, कोई भी नहीं है। सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है, यहां स्वार्थ समाप्त होता है, कोई किसी को पहचानता तक नहीं है, बाप बेटे को नहीं पहचानता है, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। तो केवल निस्वार्थ प्यार करने वाला एक ही बाप है। देखो कितना अंतर है, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, कितना अंतर है। मनुष्य लेता है और भूल जाता है, आपने दिया था मुझे, मुझे तो याद ही नहीं, देखो लेता है और भूल जाता है, और परमात्मा देते हैं और भूल जाते हैं, गिव्स एंड फॉरगिव्स। कोई कंडीशन नहीं है, कोई इसमें बिजनेस नहीं है, हम तो जितना कोई प्यार करता है उतना ही प्यार हम उसको देते हैं। और चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें चढ़ती कला की अनुभूति कराता है और प्योर बनाता है। संगम युग है चढ़ती कला का अनुभव करने का और आत्मा को पवित्र बनाने का। आत्माओं का तो शरीर भी इम्प्योर, पांच तत्वों से बना हुआ है, आत्मा भी इम्प्योर है, तो प्यार करेंगे उनसे तो इम्प्योर बनेंगे ना। तो केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। इसलिए मुझे केवल परमात्मा से ही प्यार करना है। पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, लटकाता रहता है, मटकाता रहता है। टॉप क्वालिटी की आत्माएं हमेशा टॉप फ्लोर पर रहती है, ये तो घटिया दुनिया है, थर्ड फ्लोर है, पतित दुनिया बन चुकी है, यहां क्या रखा है। तो ये पांच बातें अगर हम महसूस करते हैं तो हमारा योगाभ्यास बहुत अच्छी तरह से बाबा के तरफ बढ़ता जाता है। क्योंकि जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुड़ जाती है, जोड़नी नहीं पड़ती है। जैसा प्यार वैसी बुद्धि की तार जुड़ जाती है, जितना प्यार उतना हमारा बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ जुटा हुआ रहता है। तो प्यार हमारा बाबा से जिगरी प्यार हो। आप कहेंगे भाई हमारा प्यार तो बाबा के साथ है इसलिए तो हम यहां बैठे हैं, लेकिन हमने दादियों को देखना है। दादिया जानकी दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी, बाबा से जब डायमंड हॉल के स्टेज पर बैठती थी, मिलती थी, बाबा दादियों को बाहों में समा रहा है और दादिया भी बाबा को बाहों में समा रही, क्या बात, क्या थी उनके पास। कोई डिग्री नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं, लेकिन भगवान भी उन पर फिदा है, खुदा भी उन पर फिदा है, सारा संसार देख रहा है टीवी पर। उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके रग रग में केवल परमात्म प्यार था, इसलिए भगवान भी उन पर फिदा था। ऐसा जिगरी प्यार, हड्डी प्यार, सच्चा प्यार हमारा बाबा के साथ होना जरूरी है। प्यार के सागर के हम बच्चे हैं, तो प्यार के सागर बाप के हम सभी बच्चे हैं। हमें सबके साथ प्यार से रहना है, लेकिन दिल का प्यार, सच्चा प्यार केवल एक बाबा से ही करना है। जो किसी व्यक्ति वैभव के साथ प्यार शेयर करते हैं, वो शेर की तरह इस माया की दुनिया में दहाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमें केवल बाबा के साथ प्यार करना है। दुनिया में लोग प्यार करते हैं एक दूसरे, किस आधार पर करते हैं? हाँ जी, किसी के साथ प्यार किसी का होता है या कोई करता है, किस आधार पर करते हैं, किस आधार पर होता है? हाँ जी, प्यार पाने के आधार पर। कोई बहुत धनवान व्यक्ति होता है, खजाने वाला होता है, उससे प्यार लोग करना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि नहीं? इस दुनिया में बाबा से बढ़कर खजाने वाला कोई भी नहीं है। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला वो है। सारे संसार को बाबा कहते मेरे पास इतने खजाने हैं, सारे संसार की आत्माओं को बांटने के बाद भी कुटते नहीं है, मैं क्या करूं उन खजानों का? उस सारे खजाने आपके लिए हैं। इसलिए बाबा से हमें सच्चा प्यार करना चाहिए। और बोलो, दुनिया में प्यार क्यों करते हैं? किससे प्यार होता है? जो प्यार करने के बाद अंतिम समय तक निभाता है, बीच भंवर में धोखा देकर नहीं छोड़ता है, उसी से लोग प्यार करते हैं। और भगवान हमें इस दुनिया में, इस जन्म में तो धोखा देने वाला है ही नहीं, वो हमें तो अंतिम समय तक परम धाम ले जाता है और नई दुनिया में भी ले जाता है, कभी भी धोखा नहीं देता है। इसलिए उनसे प्यार हमारा होना चाहिए, ठीक है ना भाई? अभी आप योगाभ्यास में मास्टरी लेना चाहते हैं, हमारी रेस योगाभ्यास में है, चारों सब्जेक्ट में केवल हमारी रेस योगाभ्यास में है, अन्य तीन सब्जेक्ट उसको सपोर्ट देने वाले हैं, सपोर्टिंग सब्जेक्ट हैं, पूरक सब्जेक्ट हैं, लेकिन योगाभ्यास में बहुत अच्छी तरह से मास्टरी लेना चाहते हैं तो मन और बुद्धि के बारे में 5 बातें अगर आप जानेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका योगाभ्यास आगे ही आगे सदा बढ़ता जाएगा। बोलो, जानना चाहेंगे? बोलो भाई, जानना चाहेंगे? मैं गारंटी देता हूं आपका ग्राफ योगाभ्यास में आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। मान बुद्धि के बारे में 5 बातें हैं। पहली बात, मान हमारा कैसा हो, बुद्धि हमारी कैसी हो, मन हमारा शांत और शीतल और हल्का हो, शांत शीतल और हल्का हो, ऐसा मन मन मना भव का मंत्र का जाप करता ही रहता है, थकता नहीं है। बुद्धि कैसी हो? बुद्धि हमारी एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। एक्टिवनेस, अलर्टनेस और फ्रेशनेस बुद्धि का अगर होता है तो बुद्धि निरंतर योगाभ्यास में कार्यरत रहती है। योगाभ्यास में बुद्धि का रोल मेजर रोल होता है, इसलिए इस योग का नाम राजयोग है और दूसरा इसका नाम है बुद्धि योग। इसलिए सारे दिन भर में बुद्धि को हमने एक्टिव, अलर्ट और फ्रेश रखना है। दूसरी बात, मन और बुद्धि में सूक्ष्म अंतर क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। आत्मा शक्तियों का पुंज है, लेकिन आत्मा समझने के बाद कौन सी शक्ति मन है, कौन सी शक्ति बुद्धि है, ये सारा हमें अच्छी तरह से समझना जरूरी है। मेजॉरिटी लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए योगाभ्यास कठिन लगता है। सिंपल बात है, आत्मा स्वयं को समझने के बाद देखने वाली शक्ति बुद्धि कहलाती है और सोचने वाली शक्ति मन कहलाता है। किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो देखने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं, सोचने वाली शक्ति को मन कहते हैं। अभी आपको प्रश्न पूछते हैं, क्या आपने पांडव भवन में शांति स्तंभ देखा है? प्रश्न पूछते ही शांति स्तंभ की तस्वीर आपके सामने आती है। कौन उसको देखता है? बुद्धि रूपी नेत्र देखता है, आत्मा की देखने की शक्ति उसको देखती है बुद्धि। और कैसा है वो शांति स्तंभ? तो आप एक एक बात सोचकर मुझे बताएंगे तो वो सोचने वाली शक्तिमान है। तो ये अंतर हमें अच्छी तरह से समझना है। तीसरी बात, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि योगाभ्यास में इन दोनों शक्तियों को कच्चित अच्छी तरह से कैसे प्रयोग में लाएं, उसके लिए इनके रिलेशन को जानना जरूरी है। बुद्धि आत्मा का बॉस कहलाती है, अपने मन का बॉस कहलाती है। बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है। जहां बुद्धि जाती है मन उसके पीछे भागता है। तो हमें क्या करना है, बुद्धि को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि मन का कंट्रोलर बुद्धि है। बुद्धि अगर आपके कंट्रोल में है तो आपका योगाभ्यास बहुत अच्छी तरह से बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात आपको जानना जरूरी है, बुद्धि के काम 4-5 काम है, केवल एक काम नहीं है। बुद्धि देखने का काम करती है, आत्मा की आंख कहलाती है। दूसरा काम है, बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है। आपको पूछा गया, भाई आप मधुबन चलोगे भट्टी करने के लिए, आपका अपना जॉब था, बिजनेस था, कोई भी काम जरूरी था, आपने डिसीजन लिया हाँ मुझे जाना है, तो दीदी को कहा हाँ दीदी मुझे चलना है, यहाँ पहुंचे। तो हमेशा निर्णय लेने का काम बुद्धि करती है। तीसरा काम है, मेमोरी का काम बुद्धि करती है। बचपन की बातें हम किसी को बताते हैं, वो इतने सालों तक हम कहाँ छिपाते हैं, कहाँ समाते हैं, बुद्धि रूपी मेमोरी में। चौथा काम है, बुद्धि दिल का काम करती है, आत्मा का दिल। बाबा कहते दिल से मुझे याद करो, भाई दिल है किधर? जब भी दिल कहते हैं तो हमारा हाथ यहाँ जाता है, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ, ये दिल है क्या? ये तो हार्ट है, ये शरीर का पार्ट है, ब्लड को पंपिंग करता है। तो आत्मा का दिल उसको कहते हैं, आत्मा की जो शक्ति प्यार को एक्सप्रेस करती है उसको दिल कहते हैं। वो भी बुद्धि ही पार्ट बजाती है, इसलिए कहते प्रीत बुद्धि पांडव थे, विपरीत बुद्धि कौरव थे, उनका प्यार भगवान के साथ नहीं था। तो दिल भी बुद्धि ही कहलाती है। और दिमाग किसको कहते हैं? दिमाग का भी काम बुद्धि करती है। कहते हैं ना भाई कुछ दिमाग तो चलाओ अपना, तो बुद्धि भी दिमाग का काम करती है। और दूसरा चित्त का भी काम बुद्धि करती है। मंदिर में जाते थे देवी देवताओं के सामने, हम कहते थे हे देवी जी मेरी कमी अपने चित्त पर नहीं रखना। चित्त कौन सा है? बुद्धि में नहीं रखना। कहने का मतलब इतने सारे काम बुद्धि करती है, और बुद्धि पर सीधा प्रभाव अपना ज्ञान पाप पड़ता है। जितना ज्ञान समझते हैं हम, बुद्धि हमारी पवित्र बनती है, तीक्ष्ण बनती है, दुरंदेशी बनती है, सालिम बनती है। चौथी बात, इन दोनों शक्तियों का प्रयोग योगाभ्यास में कैसे करें? जब भी हम योग में बैठते हैं, बुद्धि रूपी नेत्र परम धाम में बाबा पर एकाग्र करना है, या सूक्ष्म तन में बाबा पर एकाग्र करना है। बुद्धि से बाबा को देखना, माना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना, सीधी बात है। जब बुद्धि बाबा को देखती है तो मन बाबा के बारे में ही सोचने लगता है, बाबा के स्वरूप के प्रति, ज्ञान के प्रति, बाबा के गुणों के प्रति, विशेषताओं के प्रति, बाबा मन ऑटोमेटिक सोचता रहता है। लेकिन जब बुद्धि वहां से हट जाती है तो मन भी उसके पीछे भागता है, कनेक्शन हमारा टूट जाता है। अभी टूटा हुआ कनेक्शन अगर हम एक सेकंड में बाबा से चाहते हैं तो उसका टेक्निक क्या है, आज शाम को आपके काम में ये युक्ति आएगी। टूटा हुआ कनेक्शन एक सेकंड में बाबा से साथ जोड़ना चाहते हैं उसकी टेक्निक क्या है? सिंपल टेक्निक है, सबसे पहले आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाइए, उसके बाद बुद्धि रूपी नेत्र चेक करो वो कहाँ है, वो बाबा पर नहीं कहीं और भटक रहा है, चेक करो और चेंज करो, उसको बाबा पर बिठा दो, एक सेकंड में आपको कनेक्शन मिलेगा। कनेक्शन मिलते ही शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होगा, आत्मा में शक्तियां आने लगेगी, आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगेगी, सफल योगाभ्यास अर्थात आत्मा में शक्तियां भरते जाना, ग्रहण करते जाना। तो ये सुंदर युक्ति है उसकी। और पांचवी बात है, सारे दिन भर में इन दोनों शक्तियों को, आत्मा रूपी माँ के ये दो बच्चे हैं मन और बुद्धि, इनको माया दुश्मन से हमें सारे दिन भर में सेफ रखना है और इनसे हमें काम भी लेना है, बाबा पर उनको एकाग्र भी करना है, इसलिए सदा सेफ रखने के लिए बहुत सुंदर युक्ति है। जब हम बाबा के घर में जाते हैं, मुरली सुनते हैं, योगाभ्यास करते हैं, समान में स्थित रहते हैं, ईश्वरीय नशे की अनुभूति करते हैं, तो सारा दिन ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर हमें रखना है, तो माया पर, माया मन बुद्धि पर वार नहीं करेगी, और वार करेगी तो भी कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए इन पांच बातों को हमने बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है, तो योगाभ्यास की गहन अनुभूति होगी, दिन प्रतिदिन प्यार हमारा बाबा के तरफ बढ़ते जाना जरूरी है। क्योंकि हमारा क्या होता है, द्वापर युग से हमारी आदत हो चुकी है देवधारियों के साथ विभिन्न संबंधियों के तरफ हमारी बुद्धि इधर उधर भागती रहती है। दुनिया में गीत बनाया है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा, तो हम बाबा से हमारा प्यार तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारा प्यार अपने संबंधी से है, अपने घर से है, कार से है, फ्लैट से है, काका से है, चाचा से है, और थोड़ा प्यार हमने बाबा के तरफ लिए रखा है। तो अभी वो बटा हुआ प्यार हमें बटोरना है और एक बाबा के तरफ ट्रांसफर करना है। तो जितना प्यार का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, उतनी गहन योग की अनुभूति आपको होती रहेगी। बाबा कहते हैं प्यार के सागर में डूब जाओ, खो जाओ, समा जाओ, लीन हो जाओ। जब प्यार के सागर में हम लीन हो जाते हैं, तो अपने अस्तित्व को खो जाते हैं, और तभी आत्मा क्लीन बनती है, जो भी कचरा आत्मा में है उस सारा सागर में समा जाता है, ज्ञान सूर्य की रोशनी में भस्म हो जाता है, और आत्मा एकदम कांचन क्लीन बन जाती है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर गहन योगाभ्यास करने जा रहे हैं, जो आपको संध्या के समय मदद करता रहेगा। करना चाहते हैं सभी? बहुत अच्छी तरह एक बार जोर से तालियां बजाएंगे। तो सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, कॉपी पेन डायरी पर्स सब सब हटा दो, एक बिल्कुल आजाद पंछी बन के बैठो। ओम शांति। ईश्वरी रूपी चैतन्य गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी विदेही स्थिति की तपस्या में लीन हूँ, मगन हूँ। इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी अशरीरी स्थिति की तपस्या में मगन मैं आत्मा तपस्वी पवित्र स्वरूप पवित्रता का सुंदरता मज आत्मा तपस्वी ने धारण किया है परम सुख की अनुभूति हो रही है भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूँ भाग्य विधाता भगवान ने मुझे भाग्य लिखने के लिए हाथ में कलम दी है इतनी लंबी लकीर मैं खींचना चाहूं खींच सकता हूं मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूं मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ जा रही हूँ इस सृष्टि रूपी रंग मंच से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं जा रही ओहो फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई जहां चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है मज आत्मा ने निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है कितनी हल्की फुल्की ड्रेस यह ओहो फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मौज फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं जा रही हूं। ओहो ब्रह्मांड की दुनिया में पहुंच गई हूं जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है शांति ही शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन मेरा स्वीट साइलेंस हो मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राण नाथ सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मौज आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा है बस बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। इस आकारी दुनिया के सूर्य से कई गुणा शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मौज आत्मा पर हो रही है होती ही जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य परमात्मा से अनंत शक्तियां असीम शक्तियां प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं ग्रहण करती ही जा रही। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के भस्मा हो रहे भस्म आत्मा होती ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति एकदम खुशी से और मजे से भरपूर, बाबा मैं आज संध्या के समय आपके साथ मिलन मनाने वाली आत्मा हूँ। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्मा अपने प्यारे पिता परमात्मा के साथ महामिलन का आनंद ले रही हूँ। उनके प्यार में विभोर हो चुकी हूँ, प्यार के सागर में डूब चुकी हूँ, खो चुकी हूँ, कंबाइंड हो चुकी हूँ, अपने अस्तित्व को भूल चुकी हूँ। मेरे शिव पिता एक तरफ प्यार के अथाह सागर हैं, तो दूसरे तरफ शक्तियों के अथाह सागर भी है। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में परिवर्तन हो चुके हैं। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापी इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, वाया सूक्ष्म वतन आ रही हूँ, इस साकारी दुनिया की ओर आ चुकी हूँ और इस साकारी शरीर पीछे तन्य गुफा में भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हो चुकी हूँ। मोज निराकार बिंदु आत्मा तपस्वी से शक्तियों के वाइब्रेशन चारों फैल रही है, फैलती ही जा रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। ओम शांति शांति।